ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। मतदान केंद्रों की लाइनों की जानकारी हासिल करने के लिए फरीदाबाद जिला निर्वाचन आयोग ने वोटर इन क्यू नामक ऐप की शुरूआत की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन करेगा। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए। और उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा आज से शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष न्यायालय ने आम आदमी पार्टी प्रमुख को 7 चरण के लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा। श्री केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय की देरी पर भी उंगली उठाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अगस्त 2022 में केजरीवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन इस साल 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया। जमानत शर्तों के अनुसार श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वो तब तक आधिकारिक फाइलों पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ये उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। श्री केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि न्यायालय ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत सच्चाई की जीत है।
ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को केवल चुनाव के लिए जमानत दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा।
अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको एक तरीके के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और एक तरीके के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को मिली जमानत पर कहा कि यह अदालत का फैसला है, लेकिन आरोप अभी भी जारी है।
उसके बाद फिर वहीं जाना है, तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं, और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल।
वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
अपनी ओर से आम आदमी पार्टी की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं कि आज जो है न्याय किया उन्होंने, और ये जो है संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, और तानाशाही को जो है ना कहीं न कहीं एक तानाशाही की हार है, ये मान लीजिए आप। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल से बाहर आए हैं। ठीक है 21 दिन के लिए आए हैं, लेकिन 21 दिन में अभी इलेक्शन है सारा, उसमें करेंगे। लोकतंत्र का पर्व है ये, 5 साल में आता है, उसके लिए एक चुने मुख्यमंत्री को अवसर मिला है।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रखा है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी और नेता शहर के अलग अलग इलाकों में मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
चुनाव प्रचार की कड़ी में आज चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने नंद नगरी में स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय के साथ विकासपुरी और मटियाला विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा आयोजित किया। पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में हर घर दस्तक अभियान चलाया। दूसरी ओर भाजपा भी चुनाव प्रचार में आज अग्रसर रही। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह विदुड़ी ने अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने शादीपुर, वसंत विहार और इंदरपुरी समेत कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने बुराड़ी में शोभा यात्रा निकाली। पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने आजाद नगर और दरियागंज में जनसंपर्क यात्रा निकाली। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया।
प्रादेशिक के लिए आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
राजधानी में छठे चरण में इस महीने की 25 तारीख को मतदान होना है। मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने स्वीप पहल के तहत राजधानी में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नेत्रहीन मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 की शुरुआत की, जिसके तहत पिंक एंड ड्रॉप सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं पश्चिमी जिला में युवा स्वयंसेवकों ने स्वीप अभियान के अंतर्गत लोगों को वोट देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने अपने उत्तर पश्चिमी दिल्ली स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव जागरूकता गुब्बारा उड़ाया। इसके अलावा आयोग ने आदर्श नगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग और करावल नगर समेत अन्य क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की। मतदान केंद्रों की लाइनों की जानकारी हासिल करने के लिए फरीदाबाद जिला निर्वाचन आयोग ने वोटर इनक्यू नामक ऐप की शुरुआत की है। फरीदाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि इस ऐप के द्वारा 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान के लिए मतदाताओं को अब घंटों लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लाइनों से जुड़ी जानकारी पोलिंग बूथ पर स्थित बीएलओ प्रदान करेंगे। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं को अपने क्षेत्र का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, मतदाता का नाम आदि जानकारी डालना होगा। संबंधित जानकारी के बाद उन्हें उनके मोबाइल पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसके द्वारा वो बूथ पर स्थित बीएलओ से जुड़ सकेंगे। बीएलओ हर घंटे या आधे घंटे बाद ऐप में बताए गए कि उस समय वोट डालने के लिए कितने लोग कतार में हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सा आपात स्थिति में स्वर्णिम समय के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि में उपचार मिलने पर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन रोगियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्याय में देरी न्याय से इनकार है वाली कहावत के संदर्भ में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार में देरी से जीवन से वंचित होना पड़ सकता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन करेगा। एनएसडी ने बताया कि इसमें 8 से 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये कार्यशाला 15 जून तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए एनएसडी की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने आज राजधानी के नेताजी नगर स्थित अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय में कई कार्यक्रम किए। एनडीएमसी ने बताया कि इन कार्यक्रमों के तहत बच्चों को खेल कर गिनती सिखाई गई और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नगरपालिका ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे आकर्षित बनाने के लिए वो विभिन्न विचारों पर कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन को तुरंत पुनः सत्यापित करने के भी निर्देश दिए। ऐसा न करने की स्थिति में इन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने एक विश्लेषण में पाया कि इन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल साइबर अपराधों के लिए किया गया है। आज से उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ खोले गए, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं।
आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सब मनोकामनाएं पूर्ण हों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि यह शुभ अवसर लोगों को परोपकार के लिए प्रोत्साहित करे और सभी के जीवन में नई ऊर्जा तथा उत्साह का संचार करे। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने आज भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें भारतीय नौसेना में 1 जनवरी 1989 को कमीशन प्राप्त हुआ था। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता का स्तर सामान्य रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। घर बैठे ही मतदान केंद्रों की लाइनों की जानकारी हासिल करने के लिए फरीदाबाद जिला निर्वाचन आयोग ने वोटर इन क्यू नामक ऐप की शुरूआत की है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन करेगा। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए और उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।